नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।